नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
हमारे पास ढेर सारी नई खेल खबरें हैं, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी एशिया कप के सुपर फोर स्टेज मैच में भारत का सामना चीन से जारी। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के पहले ही दिन 2 पदक पक्के कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। ब्राजील में विश्व वुशु चैंपियनशिप में आज भारत का बेहतरीन प्रदर्शन। और अमेरिका ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल में आज अमांडा एनिसिमोवा का सामना एरिना सवालेंका से। शुरुआत हॉकी एशिया कप से, जो कि बिहार के राजगीर में चल रहा है। आज सुपर फोर स्टेज के अंतिम मुकाबले खेले जा रहे हैं और भारत का सामना चीन से हो रहा है। मैच की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय के पास। धर्मेंद्र जी, प्रतियोगिता में किस टीम की मजबूत पकड़ दिख रही है अभी?
जी बिल्कुल, आकर्षक खेल दिखाया। शुरू से ही भारतीय टीम जो है चीन पर हावी है, और पहले ही क्वार्टर में जो शीलानंद लाकड़ा ने पहला गोल किया, उसके बाद एक के बाद एक पहले हाफ में 2 और गोल दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने किए, तो पूरी तरह से हावी है चाइना की टीम पर। और यहाँ कहना यह गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले के लिए अग्रसर हो चुकी है।
जी, जैसा कि आपने कहा कि भारत की टीम शुरुआत से ही हावी दिख रही है, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच कैसा उत्साह देखा जा रहा है, खासकर भारतीय फैंस के बीच?
जी, दर्शकों में काफी उत्साह है। 10,000 से 12,000 दर्शक पहुंचे हुए हैं भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए। और जो है, हर जब जब भारतीय टीम चीन के खेमे में बॉल लेकर चल जाती है, और उसका जो है दर्शकों में काफी उत्साह, तालियों से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और आज जो एक भारतीय टीम में देखने को मिला, पहले की गेम की तुलना में छोटी छोटी पास पर जो है काफी ध्यान केंद्रित किया, और उसका जो नतीजा देखने को मिला कि पहले हाफ में 3-0 से भारतीय टीम आगे है।
जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। आज खेले गए पहले मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया पर 4-3 से शानदार जीत हासिल की। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरी समय में कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत की टीम शुरू से ही आज के मैच में हावी दिख रही है। पहले भी मैचों में हमने देखा किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, और कोरिया और मलेशिया के बीच भी कांटे की टक्कर रही, तो फाइनल में क्या लगता है, कैसी चुनौती मिलेगी भारत को?
देखिए, अभी इस मैच में जैसा कि लग रहा है 3-0 से भारत आगे चल रहा है, और अगर आज भारत जीत जाता है तो चांसेस इसके हैं कि जिस तरह से दक्षिण कोरिया ने पलटी मारी है मलेशिया को हराकर टेबल में सेकंड नंबर पे आ गया है, तो इंडिया और कोरिया सबसे सफल टीम है टूर्नामेंट की। कोरिया 5 बार की चैंपियन है, हालांकि भारत से मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन बहुत ही मजबूत टीम है। अगर यहां से भारत जीत जाता है तो भारत कोरिया फाइनल हो सकता है। चीन की वापसी की अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले ही क्षण से भारत ने इस खेल में अपना दबदबा बना लिया है। और अगर इस टूर्नामेंट को हम देखें, भारत के प्रदर्शन को हम देखें, तो पहले 1-2 मैच में लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन सही नहीं हो रहा, लेकिन जो मलेशिया के खिलाफ भारत ने गोल किए, सिर्फ एक गोल उसमें पेनल्टी कॉर्नर पे हुआ था, बाकी फील्ड गोल थे। और आज भी आप देखिए, शीलानंद लाकड़ा एक युवा खिलाड़ी है, उसने गोल किया है, दिलप्रीत सिंह युवा खिलाड़ी है, उसने गोल किया है, मनदीप सिंह काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। मिडफील्ड में जिस तरीके का खेल हो रहा था, मनप्रीत जो टोक्यो ओलंपिक के हमारे कांस्य पदक विजेता कप्तान रह चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने मिडफील्ड की कमान संभाली है, बहुत ही जबरदस्त भारतीय टीम का प्रदर्शन देखने को मिला है। और सभी खिलाड़ियों को पता है कि अगले साल जो बेल्जियम और नीदरलैंड में वर्ल्ड कप होना है, उसमें डायरेक्ट क्वालिफाई करना है, तो ये सबसे सुनहरा मौका है भारत के पास, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम उसी दिशा में अब आगे बढ़ रही है।
जी बिल्कुल, यानी कि भारत की टीम ने अभी पिछले मैचों की गलतियों से बहुत कुछ सीखा, ये हम कह सकते हैं।
बिल्कुल।
अब बात करते हैं महिला हॉकी एशिया कप की। चीन के हांगझो में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में आज भारत और जापान के बीच का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। नवनीत कौर के आखिरी क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और दूसरे पूल मैच में जापान को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया। भारत का अगला मुकाबला सोमवार को सिंगापुर से होगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 2 पूल में बांटा गया है और दोनों पूल से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई करेगी। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमें 14 सितंबर को होने वाले फाइनल में खेलेंगी और एशिया कप विजेता टीम बेल्जियम और नीदरलैंड में अगले साल होने वाले महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत इस टूर्नामेंट में अपनी अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया और ड्रैग फ्लिकर दीपिका के बिना खेल रहा है, तो क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी चोटिल हैं
जी,
इसका कितना नुकसान देखने को मिल रहा है?
देखिए, सविता बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं और काफी दारोमदार उनके ऊपर था यहाँ पर, लेकिन अभ्यास के दौरान चोटिल हो गई है। लेकिन उनकी जगह भारतीय टीम में जो गोलकीपर ने ली है, भारत का प्रदर्शन अभी तक देखा जाए तो अपराजय है भारतीय टीम अभी तक। पिछले मैच में जिस तरीके से थाईलैंड को 11 गोल से हराया और आज भी लगभग हारा हुआ मैच ड्रॉ कराने में भारत ने सफलता हासिल की है, तो अच्छा, कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन। क्योंकि दीपिका भी नहीं है, सबसे प्रतिभाशाली ड्रैग फ्लिकर है और आधुनिक हॉकी में एक अच्छा ड्रैग फ्लिकर अगर आपकी टीम में नहीं है तो उसका क्या खामियाजा हो सकता है, ये सभी को पता है। तो उस हिसाब से अगर देखे तो काफी अच्छा भारतीय टीम का अब तक का प्रदर्शन रहा है और भारतीय टीम रीबिल्डिंग की प्रोसेस में है, क्योंकि प्रो लीग में प्रदर्शन बहुत खराब था, यूरोप चरण में नीचे खसक गई भारतीय टीम, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, तो कुछ भी अच्छा पिछले साल हुआ नहीं है। इस साल जो कोच हरिंदर सिंह है वो बोले हैं कि उनका जो टारगेट है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये टूर्नामेंट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
जी बिल्कुल। भारतीय तीरंदाजों ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कंपाउंड तीरंदाज ऋषभ यादव के शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत आज चैंपियनशिप के पहले ही दिन पुरुष और मिक्स टीम स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंच गया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 पदक पक्के कर लिए हैं। 11 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपियन दीपिका कुमारी और कंपाउंड स्टार ज्योति सुरेखा वेन्नम सहित 12 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया है। इससे पहले 2023 में बर्लिन में आयोजित प्रतियोगिता में पिछले संस्करण में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य के साथ भारत शीर्ष पर रहा था। क्या लगता है, इस सफलता को भारत दोहरा पाएगा?
बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए, ऋषभ यादव का आपने जिक्र किया, पहली बार विश्व चैंपियनशिप खेल रहे हैं और जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, 709 क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने अंक बनाए और ऑस्ट्रेलिया को शूट ऑफ में हराया, फिर अमेरिका को 1 अंक से हराया, उसके बाद टर्की को हराया 2 अंक से, तो बहुत ही कड़े मुकाबले और ये सारे पावर हाउसेस हैं तीरंदाजी में। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और ज्योति सुरेखा वेन्नम बहुत ही वेटरन है, 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है और 2021 में अभिषेक वर्मा के साथ उन्होंने रजत पदक जीता था मिश्रित युगल में और इस बार फिर ऋषभ यादव के साथ उनकी दावेदारी है। तो एक युवा और एक अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा तालमेल है और मुझे लगता है कि भारत का प्रदर्शन यहां से बहुत अच्छा रहने वाला है।
जी, भारत ने रिकर्व तीरंदाजी में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता, तो दीपिका कुमारी और धीरज बोमा देवरा क्या इस बाधा को तोड़ सकेंगे? कैसे उम्मीद है?
दीपिका कुमारी से तो बहुत समय से एक खिताब, एक पदक की अपेक्षा है और धीरज बोमा देवरा भी शुरुआती जो उन्होंने दिखाए थे वो उस लय को कायम नहीं रख पाए हैं और ये दोनों काफी अनुभवी, दीपिका तो कितनी बार ओलंपियन वर्ल्ड कप सब कुछ खेल चुकी है, तो उन पर काफी कुछ दारोमदार होगा और एक तरीके से देखा जाए तो कमबैक अगर उन्हें करना है तो यही उनके पास मौका है।
जी, ब्राजील में चल रही 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 3 महिला खिलाड़ी फाइनल में और 2 पुरुष खिलाड़ी नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
महिला वर्ग में अपर्णा ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में इंडोनेशिया की थारिसा डिया फ्लोरियंटेना को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। अब अपर्णा का अगला मुकाबला कल वियतनाम की एनजी थी भोंग नगा से होगा। करीना कौशिक ने 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में ब्राजील की नथालिया ब्रिकेसी सिल्वा को हराया। अब उनका सामना चीन की शिया ओवेई वू से होगा। शिवानी ने रूस की एकातेरिना वोल्चुक को हराकर 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां उनका मुकाबला ईरान की शहरबानो मंसूरियान सेमिरोमी से होगा। पुरुषों में सागर दहिया ने 56 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उनका अगला मुकाबला कल फिलीपींस के कार्लोस बेलोन जूनियर से होगा। वहीं विक्रांत बालियान पुरुषों के 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका सामना चीन के गेनशेंग जिन से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
इससे पहले वुशु में भारत का इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा गया था, इस बार अच्छी पकड़ देखने को मिली है।
देखिए, कई नए खेल ऐसे हैं जिनमें भारतीय खिलाड़ी बहुत ही अच्छे, पारंपरिक रूप से जिन खेलों में हम अच्छा खेलते हैं उनके अलावा कई नए खेल है, और वुशु भी उनमें से एक है। पिछले साल जो ब्रुनेई में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहां भी भारत ने 2 स्वर्ण पदक समेत 7 पदक जीते थे, और ये जूनियर खिलाड़ी ही आगे जाके सीनियर लेवल पे खेलते हैं। तो वो जो ग्रास रूट पे प्रतिभा को तलाशने की जो हमारे यहाँ सिस्टम शुरू हुआ है, खेलो इंडिया हो चाहे यूनिवर्सिटी गेम्स हो, तो वहां से जो नए खेलों में नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, वो आप देखिए एक चैंपियन बनने की प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस सही जा रही है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन और अच्छा रहने वाला है।
जी, अब बात अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां महिला सिंगल्स में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा का सामना मौजूदा चैंपियन बेलारूस की इरीना सबालेंका से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार आज मध्यरात्रि के बाद करीब 1:30 बजे से खेला जाएगा। अनिसिमोवा ने रोमांचक सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका को 6-7, 7-6, 6-3 से हराया था। वहीं सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को हराकर दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। पिछले वर्ष के में भी दोनों के बीच अच्छे मुकाबले देखे गए थे।
देखिए, हम अगर सबालेंका की बात करें तो पिछली बार भी उन्होंने पेगुला को हराकर खिताब जीता था, और लगातार दूसरा खिताब मेरे ख्याल से सेरेना विलियम्स 2012 से 14 के बीच में जो जीती थी, उसके बाद शायद ये पहली खिलाड़ी
लगातार 3 खिताब उन्होंने जीते थे।
बिल्कुल बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली बनने की फिराक में है, और दूसरा सामना है अनिसिमोवा से, जो जायंट किलर पहले ही इस टूर्नामेंट में साबित कर चुकी है खुद को। विंबलडन में 6-0 से हारी थी वो इगा स्वियातेक से, और यहां पर उनको हराया है, नाओमी ओसाका को हराया है, दो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर वो यहां तक पहुंची है। तो सबालेंका पे भी काफी प्रेशर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो मेडिसन कीज से हार गई थी फाइनल में, और फ्रेंच ओपन में कोको गाफ से हार गई थी। तो लगातार तीसरी बार वो इस साल में फाइनल मुकाबला हारने से बचना चाहेंगी, तो यहाँ मुझे लगता है एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
जी, और पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल इटली के जैनिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। सिनर ने सेमीफाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया, जबकि अल्कराज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टोक्यो में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिर से पेरिस ओलंपिक भाला फेंक फाइनल की तरफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन चोपड़ा 13 से 21 सितंबर के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि नदीम पाकिस्तान से एकमात्र खिलाड़ी होंगे। कितना रोमांचक मैच होने की उम्मीद है ये?
देखिए, बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का जहां खेल के मैदान पर जिक्र आता है, एक अतिरिक्त रोमांच वैसे ही उसमें जुड़ जाता है। और जिस तरीके से अरशद नदीम का प्रदर्शन था पेरिस ओलंपिक में, 92 उन्होंने जो थ्रो फेंका था, और उसके बाद नीरज चोपड़ा सेकंड रहे थे, लेकिन उसके बाद से नदीम बहुत ज्यादा खेले नहीं है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग खेले हैं, दोहा में उन्होंने 90 मीटर का बैरियर भी क्रॉस किया, लेकिन नदीम इन स्पर्धाओं में नजर नहीं आए। तो काफी समय बाद दोनों की भिड़ंत होने वाली है, और एनसी क्लासिक जो बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें शुरुआत में नदीम को न्योता दिया गया था, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो नहीं उसमें भाग लिया उन्होंने, तो बहुत ही रोचक मुकाबला रहने वाला है।
जी, और घड़ी की सुइयां अब हमें इजाजत नहीं दे रही है कि और आगे चर्चा किया जाए, लेकिन कल फिर इसी समय मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तो मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की खेल खबरों पर, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया
श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।